नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम मात्र योजना नहीं बल्कि इंद्रधनुषी दृष्टि है जो विभिन्न क्षेत्रों को नए अवसरों से जोड़ती है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर स्टार्टअप इंडिया के एक दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया मिशन एक दशक में क्रांति बन गया है और पूरे देश में नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान में भारत के युवाओं का ध्यान वास्तविक समस्याओं के समाधान पर अधिक है। इसके लिए उन्होंने इन युवाओं की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर स्टार्टअप शुरू करने वालों और नवाचार के अग्रदूतों का एकत्र होना भारत के आगामी विकास को दर्शाता है।
नेशनल स्टार्टअप डे का ये अवसर, स्टार्टअप फाउंडर्स और इनोवेटर्स का ये समूह मैं अपने सामने नए और विकसित होते भारत का भविष्य देख रहा हूँ। अभी मुझे कुछ स्टार्टअप की दुनिया के लोगों से उनके कुछ अचीवमेंट थे, उनके जो प्रयोग थे उसे देखने का अवसर मिला, कुछ साथियों को सुनने का अवसर मिला, एग्रीकल्चर में काम कर रहे स्टार्टअप, फिनटेक, मोबिलिटी का सेक्टर, हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी का फील्ड। आपके जो आइडियाज है वो सिर्फ मुझे नहीं हर किसी को इम्प्रेस करने वाला है।
श्री मोदी ने कहा कि एक दशक पहले भारत में 500 से कम स्टार्टअप थे लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर 2,00,000 से अधिक हो गई है। वर्ष 2014 में भारत में केवल 4 यूनिकॉर्न थे लेकिन अब इसकी संख्या 125 से अधिक हो गई है। इस उल्लेखनीय बढ़ोतरी ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सरकार आगामी बजट सत्र में बीज अधिनियम 2026 पेश करेगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस कानून का उद्देश्य खराब गुणवत्ता वाले नकली और अनधिकृत बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाना है।
इसमें ट्रेसेबिलिटी का पूरा एक सिस्टम होगा, जो बीज आएंगे वो ये पता चलेगा कि डीलर के पास कहां से आए। एक तो ये होगा कि खराब बीज सिस्टम में आएंगे ही नहीं और आए तो वो पकड़े जाएंगे और जिसने दिए उसको दंड दिया जा सकेगा, इसकी व्यवस्था की गई है। सीड कंपनी का रजिस्ट्रेशन बाकायदा किया जाएगा, इससे अनाधिकृत रूप से अगर कोई बीज बेचेगा तो वो भी जानकारी तत्काल प्राप्त की जा सकेगी। हाँ, एक बात मैं इसमें कहता हूँ कि परंपरागत बीज जो किसान बोता चला आया है पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि किसान आपस में भी बीजों का विनिमय करता है।
बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी चुनावों में भाजपा शिवसेना गठबंधन जीत की ओर बढ़ रहा है। गठबंधन 119 सीटों पर आगे है, भाजपा 88 और शिवसेना 31 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। शिवसेना यूबीटी 64 सीटों पर जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना केवल 6 सीट पर आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियमन 2026 अधिसूचित कर दिया है जो 2015 के वस्तु और सेवा निर्यात विनियमन का स्थान लेगा। नए विनियमन 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगे। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत जारी किए गए इन विनियमों का उद्देश्य सॉफ्टवेयर सहित वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात तथा आयात से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और विदेशी मुद्रा लेन देन की निगरानी को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम और पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने वाले ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बागुरुम्बा दोहो 2026 में भाग लेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 2 नई पुस्तकों का विमोचन किया। जनरल वी बानो और महात्मा शीर्षक वाली ये पुस्तकें भारत के पहले नमो पुस्तक महोत्सव में विमोचित हुई थी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मकर संक्रांति किसानों का त्यौहार और एक तरह से ये लोग ही इस दिन अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में 3रे अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कवि कालिदास ने भारत के लिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी थी, उत्सव प्रियजन। इसका मतलब ये है कि भारत के लोग त्यौहारों को लेकर उत्साहित रहते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।